उन्होंने बैरून मुल्क तवील अरसा मुलाजमत की और 25-30 लाख रुपए की रकम जो सारी सेविंग थी अपने बच्चों के लिए रखी थी वो उसी में थी, वो सारी की सारी डूब गई। बेचारे बहुत परेशान हुए, अभी तक परेशान है, पूरी रकम उनको नहीं मिली, बहुत थोड़ा हिस्सा उसका मिला है। इंडोनेशिया मलेशिया जो हमारे ईस्टर्न फार ईस्टर्न के लोग हैं जो एशियन टाइगर्स कहलाते थे, बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे थे। यहूदियों को ईसाइयों को यह काबिल कबूल नहीं था कि मुस्लिम ममालिक इतना तेज़ी से आगे जाएँ। उन्होंने ऐसा झटका दिया है कि वहाँ की हालत बिल्कुल तेज़ी से के साथ डाउन जा रही है। रिंगेट जो वहाँ का सिक्का है मलेशिया का, मैं 1990 में मलेशिया गया, फिर 91 में गया, फिर 92 में गया, 93 में गया और कई बार जाने का इत्तेफाक हुआ। उसका एक इतना स्टेबल था कि 10 रुपये पाकिस्तानी से कुछ कम, 9 रुपये 80 पैसे का एक रिंगेट हुआ करता था। अब 17 रुपये का रिंगेट हो गया है, तनख्वाहें कम हो गई हैं, बजट में कर्टेल हो गया है, टैक्स लग गए हैं और इतनी तेज़ी के साथ इकानमी उनकी डाउन हो रही है इसी सूदी निज़ाम की वजह से कि वो सारा निज़ाम इंटरनेशनल बैंकर्स के साथ इतना लिंक है कि वो जब चाहें उसको तबाह कर दें। तो इसलिए ये कहना कि सूद को अल्लाह ताला यानी सूद को उसकी वजह से बढ़ रहा है, मेरे ख्याल में तो नहीं बढ़ रहा। हमारे रोज़ सामने की बात है कि सूदी कारोबार के जो तबाहकुन नतायज हैं हमारे सामने आ रहे हैं। व्हेन वी टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड पे इंटरेस्ट, इज़ दैट रिबा? डेफिनेटली इट इज़ रिबा। रिबा का मतलब कुरान की रूह से, ये किसी बहन ने लिखा है रेवाव है, ये रेवाव होता है सिर्फ, रूह से मुराद है स्पिरिट, जो अंदर इंसान के रूह होती है वो रेवाव है होता है। और फला की रूह से, इस कानून की रूह से वो सिर्फ रेवाव होते हैं। रूह के माने चेहरा या तरफ या साइड, इन रिस्पेक्ट ऑफ के माने में सिर्फ रूह होता है, ये फारसी का लफ्ज़ है। और रूह जो है के साथ है वो अरबी का लफ्ज़ है। तो कुरान की रूह से सिर्फ रेवाव लिखिए। रिबा का मतलब कुरान की रूह से जानना चाहती हूँ, मैं बता चुका हूँ रिबा के वही मफहूम है कुरान की रूह से। अगर किसी शख्स के पास पैसे जमा होंगे जिससे वो चावल जब सस्ते हों हार्वेस्ट के वक्त ख़रीदना चाहता हो, एक दोस्त आकर पैसे कर्ज मांग लेता है, इस वादे के साथ चावल की कटाई होगी जब मकदार में वापस कर देगा। जब कर्ज लौटाने का वक्त आया तो दोस्त ने पैसे लौटाने के बजाय पैसे खुद अपने फ़ायदे के लिए आगे इन्वेस्ट कर दिए, मसलन उसे चावल ख़रीद लिए। ये बताने के लिए जिस शख्स के पैसे थे, क्या वो उस इन्वेस्टमेंट का हिस्सेदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बशर्ते कि वो पहले तय करे कि दोनों मिलकर चावल ख़रीदते हैं। आज ख़रीद लेते हैं सस्ता चावल, उसके बाद जब कीमत बढ़ेगी तो हम बेच देंगे, यानी होल्डिंग की नीयत से नहीं, किसी एहतकार की नीयत से नहीं, बल्कि जैसे आम मार्केट में आदमी ख़रीदता है और मिडिल मैन अपनी मेहनत का पैसा और उसका नफ़ा रखने के बाद बेच देता है, दोनों मिलके बेचें और जो नफ़ा हो दोनों बराबर तकसीम कर लें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स कर्ज ले और कर्ज लेने के बाद उसकी रकम महफूज हो और वो चावल ख़रीद के उसकी रकम वापस करे, तो उसको इंक्रीज़ लेने का इख्तियार नहीं है। इसलिए कि अगर वो दोनों मिलकर चावल ख़रीदें और हो सकता है चावल की कीमत ना चढ़े, हो सकता है इतना चावल मुल्क में पैदा हो जाए कि उसकी कीमत गिर जाए, तो फिर उसका नुकसान दोनों को बर्दाश्त करना चाहिए। आई रन ए बिज़नेस फॉर विच आई हैव टेकन लीज अकॉर्डिंग टू द लीजिंग कंपनी, इट इज़ मुजारबा अगेंस्ट एयर कंडीशनिंग यूनिट, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड लोन? देखिए, लीजिंग और लोन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोन जो होता है वो रकम का, कैश का होता है, लीजिंग किसी कमोडिटी की होती है, किसी रकम की नहीं होती। शरीयत में दोनों में फ़र्क है। अच्छा कि आपने याद दिलाया, मुझे असल गुफ्तगू में ये बात कहनी चाहिए थी। अंग्रेज़ी में दोनों के लिए बोरो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मैं आपसे ये मांग के ले जाऊँ तो आप कहेंगे आई हैव बोरोड ए वॉच फ्रॉम यू, और मैं आपसे 100 रुपये ले जाऊँ उसके लिए भी बोरो का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शरीयत में ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक है आरिया, एक है कर्ज़। कर्ज़ होता है किसी कंज्यूमेबल चीज़ का जो कंज्यूम की जा सके। मतलब मैंने आपसे चीनी मांग ली इस काम के लिए कि मैं उसको चाय में इस्तेमाल कर लूँ, या हलवा बना के खा लूँ। रखने के लिए, देखने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होती ना कि मैं, और जब वापस करूँगा तो वही चीनी वापस नहीं करूँगा, हो ही नहीं सकता। वही चीनी वापस करूँगा तो मैं पागल बेवकूफ़ हूँ कि वो चीनी ले कर रख ली, शक्ल देखी, उसके बाद वापस कर दी, ये तो नहीं होता। वो चीनी तो खर्च हो जाएगी, चली जाएगी, उसकी जगह वैसी ही दूसरी चीनी मैं आपको वापस कर दूँगा। ये तो है कंज्यूमेबल्स। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ करने के लिए होती हैं, कि आपसे गिलास ले लिया, मेहमान आ गए हैं घर में, बिस्तर मंगवा लिए, चादरें मंगवा ली, उस चादर को खा नहीं जाएंगे, फाड़ के ख़त्म नहीं कर देंगे, जब मेहमान इस्तेमाल कर लेगा आपको वापस कर देंगे। वही चादर होगी बेआईनी ही, वही गिलास होगा, वही घड़ी होगी। इन दोनों में शरीयत ने फ़र्क किया है। जो लीजिंग है, एक को कहते हैं मिसली, एक को कहते हैं कीमी। जो चीज़ें कीमी हैं उसमें सूद चलता है, जो चीज़ें मिसली हैं उसमें सूद चलता है, जो चीज़ें कीमी हैं उसमें सूद नहीं चलता। ये लंबी बहस है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता। लेकिन जो चीज़ कंज्यूमेबल है उसकी लीजिंग नहीं हो सकती, जो यूज़ेबल है उसकी लीजिंग हो सकती है। जो कंज्यूमेबल की लीजिंग करता है वो सूद है, कंज्यूमेबल का कर्ज होता है, कर्ज पे इंक्रीज लेना जायज़ नहीं है। मैं आपसे चीनी कर्ज ले लूं और बाद में कहूं कि जी मैं एक मन के बजाय दो मन लौटा दूंगा, तो ये रिबा है, इसलिए कि वो चीज़ तो मैंने खर्च कर ली, वो तो ख़त्म कर दी खा के। उसमें कोई जैसे रज़ाई आपसे मंगवा लें, रज़ाई में तो कोई इंक्रीज़ नहीं होगा ना, कि रज़ाई मेरे इस्तेमाल करने से एक फुट बढ़ जाएगी या उसकी रुई में इजाफा हो जाएगा, और रुई में इजाफा करके दूंगा तो वो रिबा हो जाएगा, इसलिए वो तो वही रहेगी, वो रिबा नहीं है। और उसकी लीजिंग भी हो सकती है, आप कहेंगे जी हम एक रुपया रोज़ाना के हिसाब से लेंगे, रज़ाई ले जाइए, मेहमान आए हैं, एक रुपया रोज़ होगा, वो जायज़ है, इसलिए कि वो बेआइन ही मैंने आपको वापस कर दी। उसके मुकाबले में कमोडिटी है मुतय्यन, वो मुतय्यन कमोडिटी उसके मुकाबले में है, फट गई तो मैं ज़िम्मेदार हूँगा, फट गई तो उसके जो वेयर एंड टीयर होगा इस्तेमाल से उसकी आप ज़िम्मेदार हैं। घर में अचानक खुदा न खास्ता आग लग गई तो फिर आप ज़िम्मेदार हैं, हम कह देंगे जी ज़ाया हो गई, इसलिए चूंकि उसका तावान आपके ज़िम्मे है, उसके पैसे भी आप ले सकती हैं। लेकिन जो कंज्यूमेबल चीज़ है, जो खर्च करके इस्तेमाल हो गई, एक ही मरतबा यूज़ हो सकती है, उसको कर्ज़ लिया जा सकता है और कर्ज़ के मुकाबले में कोई नफ़ा नहीं हो सकता। डिफरेंस बिटवीन यूजरी एंड इंटरेस्ट, इस पर बात हो चुकी है, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर बात हो गई, बीमा पॉलिसी की बात हो गई, प्राइस बॉन्ड पर बात हो गई। प्राइस बॉन्ड पर मेरी ज़ाती राय यह है कि जो इंक्रीज़ मिलता है ये रिबा है, क़िमार भी है और रिबा भी है, और इसमें दोनों किस्म की कबाहतें हैं। क़िमार उसे कहते हैं कि दो आदमी यकसां तौर पर क्लेम रखते हों किसी चीज़ का, और उसी की खातिर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया हो, और फिर किसी एक शख्स को उसका बेनिफिट मिल जाए, बाकी लोग महरूम हो जाएं, इसको क़िमार कहते हैं। क़िमार की दो किस्में हैं, ये हल्के दर्जे का क़िमार यह है, बड़े दर्जे का क़िमार यह है कि दूसरे की असल रकम भी ज़ाया हो जाए और एक शख्स को मिल जाए, सब मिलके एक एक रुपया डालें और फिरकी घुमाएं और जिसका नाम आ जाए वो सारे पैसे लेके चला जाए, बाकी लोग महरूम हो जाएं, ये तो क़िमार है, ये तो असली क़िमार है, बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन ये बात कि सब लोग 10-10 रुपये देंगे और जिसके नाम पर फिरकी आकर रुक जाएगी उसको ये घड़ी मिल जाएगी और बाकी को नहीं मिलेगी, ये जायज़ नहीं है। इसलिए कि अगर वो 10 रुपये आपको वापस भी कर दिया, वो तो 10 रुपये गए आपके, ज़ाया हो गए, और 10 रुपये की जगह फंस गए, 100 आदमी से 10-10 रुपये ले लिए और 1000 रुपये जमा हो गए और उसमें फिरकी लगा के 200 रुपये की घड़ी दे दी, तो वो तो बड़ा फ़ायदे में रहा, 800 रुपये उसको घर बैठे मिल गए। घड़ी जाके मार्केट में बेचता तो 200 रुपये की घड़ी पे मुश्किल से 20-25 रुपये का नफ़ा लगता, यहाँ 800 रुपये का नफ़ा है। तो इसलिए शरीयत ने क़िमारबाजी को भी जायज़ नहीं रखा। इसमें क़िमारबाजी भी है कि लोग 10-10 रुपये के बॉन्ड ख़रीदते हैं हज़ारों और 1,00,000 रुपये एक आदमी को मिल गया, ठीक है, वो वापस अपनी रकम ले सकता है, लेकिन कितने लोग हैं जो रकम वापस लेते हैं, वो उस लालच में फिर रखते हैं उसको, वो लालच को अपील करते हैं ना इंसान की हिर्स को, के बैठे बिठाए 1,00,000 रुपये मिल जाएंगे 10 रुपये के मुकाबले में, तो इसलिए ये भी क़िमार की एक शक्ल है, इसलिए जायज़ नहीं है। और उस रुपये को रिबा पर लगाते हैं, उस रिबा के एक हिस्से से आपको इनाम देते हैं, तो उसमें रिबा भी है और क़िमार भी है। मेरा ख़्याल है बस करें, इसलिए कि काफ़ी वो सवालात अब बाकी हैं। द मनी इन करंट अकाउंट की बात होगी, करंट अकाउंट में जो इनक्रीज तो कोई उसमें मिलता ही नहीं, वो तो जाहिर है करंट अकाउंट में रखना जायज़ है। इज़ देयर एनी इस्लामिक बैंक वेयर वी कैन डिपॉजिट अवर मनी? फ़िलहाल दो इस्लामिक बैंक यहाँ हैं, एक अलबरका बैंक है और एक फैसल इस्लामिक बैंक है, यहीं मेन रोड पर है, कादर एवेन्यू पर, उसमें आप रख दें या किसी और जायज़ कारोबार में लगा दें। इफ़ यू टेक वन टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन टू अकाउंट and currently devalue and currency devaluation into account, then is it not fair to add interest? ये fair नहीं है, इसलिए कि वही मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो inflation हुआ है वो उस कर्ज मकरूज के किसी गलती की वजह से तो नहीं हुआ ना, तो जिसकी गलती नहीं है वो उसका तावान क्यों बर्दाश्त करे? इन्फ्लेशन हुई है हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से, हुकूमत की पॉलिसियों का ज़िम्मेदार ये आदमी कैसे है? फिर वही मैंने मिसाल दी कि अगर डिफ्लेशन के नतीजे में वो कम रकम लेने को तैयार हो तो इन्फ्लेशन की रोशनी में उसको ज़्यादा लेने का हक पहुँचता है, लेकिन डिफ्लेशन में कोई शख्स ज़्यादा कम लेने को तैयार नहीं होगा। बैंक्स विच क्लेम दैट दे डील इन इंटरेस्ट फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स दैट इज़ द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एट्सेट्रा, हाउ फार इज़ दिस इन अकॉर्डेंस विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स? अगर वाकई वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की बुनियाद पर काम कर रहे हों कोई बैंक और वाकईतन उसी कारोबार को कर रहे हों तो फिर बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अफसोस यह है कि पाकिस्तान में बहुत से बैंक बज़ाहिर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का दावा करते हैं लेकिन अमलन उसमें बहुत सी खराबियां उन्होंने पैदा कर दी हैं, इसलिए बेहतर यह है कि उसको अवॉइड करें। अगर कोई ना कर सके ठीक है, मजबूरी है, लेकिन इस्तफार भी साथ साथ करते रहें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मुहद्दिस थे और अपने ज़माने के इंतहाई مقدس ترین اور گویا اعلیٰ ترین انسانوں میں تھے مسلمان، ان کے سامنے احترام سے سر تسلیم ہر مسلمان خم کرنے پر مجبور ہے. ایک شخص دور سے ان سے ملنے کے لیے آیا کہ جی حدیث رسول کے اتنے بڑے خادم ہیں، اور ایک حدیث بھی ہے، کئی حدیث کتابوں میں آئی ہے کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ علم کی تلاش میں دور دور سے آئیں گے. یوشکو یغضب الناس اقباد الابل، اور اونٹوں کی پشت پر بیٹھ کے آئیں گے، اور مدینہ کے عالم سے بڑا عالم ان کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. تو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ امام مالک کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی تعداد سے دور دور سے، حتیٰ کہ اسپین سے لوگ آیا کرتے تھے امام مالک سے قصب فیض کرنے، اتنا بڑا درجہ ان کا تھا. خلیفہ منصور ان کے دربار میں گیا کہ جی میں آپ سے حدیث رسول پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کسی وقت اگر آ کے مجھے پڑھا دیں. منصور عباسی جو پورے اس وقت کے حساب سے دیکھیں تو 25 ملک اس کی سلطنت میں شامل تھے، تو اس نے خط لکھا بڑے ادب سے. امام مالک نے پرزے اسی کے کونے پہ لکھ دیا کہ العلم یؤتا ولا یأتی، العلم یؤتا ولا یأتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا. اتنے درجے کے آدمی تھے. تو ایک شخص ان کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت سے بھی نوازا تھا، تو دیکھا کہ امام مالک کا مکان بڑا اعلیٰ قسم کا ہے، کپڑے بڑے اچھے ہیں، گھر میں ملازم ہیں، گھوڑے نوکر چاکر. تو اس کے ذہن میں تھا کہ مذہب کے لوگ ہمیشہ بڑے پور غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، تو یہ تو بڑے پیسے والے ہیں. تو اس نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا. تو امام مالک نے اس میں کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا نام نفعل و نستغفر، اچھے کپڑے بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ سے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. تو یہ جملہ امام مالک کا بڑا مشہور ہے کہ نفعل و نستغفر، تو آپ نفعل و نستغفر پہ عمل کریں. میری ایک کزن ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، شوہر کا کریکٹر اچھا نہیں، بیوی بچوں سے الگ رہتا ہے، کسی دوسرے شہر میں بچوں سے کوئی محبت نہیں، نہ خرچہ بھیجتا ہے، کہتا ہے بیوی کو نہ رکھوں گا نہ طلاق دوں گا. کزن میری بہت پریشان ہے، کوئی جاب وغیرہ بھی نہیں مل رہی اس کو کہ اپنی بچوں کی ضرورت پوری کر سکے، اس وجہ سے تھوڑا سا جو پیسہ اس کے پاس ہے اس کو فکس کروا دے، یعنی ماہانہ منافع جو ہے اس پہ گزر بسر کرے. اگر آپ کی بہن یا کزن کسی جائز کاروبار میں لگا سکتی ہیں، شیئر وغیرہ خریدنے کی ہمت ہے، جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں، اس کے لیے تھوڑا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری ہے، ایکٹیو ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ ایسی ہیں یا کوئی اور ذمہ دار امانت دار آدمی کر سکتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ کریں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ PLS اکاؤنٹ ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں کم از کم برائے نام تو اسلام کے مطابق ہے، شریعت کی کوئی اصطلاحات تو استعمال ہوئی ہیں، جو خرابیاں ہیں وہ جزوی ہیں، کلی نہیں ہیں. اور نفعل و نستغفر پہ عمل کریں. سم اسکالرز ان دا ویسٹ ہیو کلیمڈ دیٹ مارٹگیج از حلال ان دا ٹائم آف نیڈ. جی رہن بالکل حلال ہے، قرآن مجید میں آیا ہے فرحان مقبوضہ، رہن کے جائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن رہن اور مارٹگیج میں تھوڑا سا فرق ہے، اگرچہ لغوی اعتبار سے مارٹگیج کے معنی بھی رہن کے ہیں. رہن کی جو تفصیلات آج کل کے قانون میں ہیں اور انگلستان میں اور امریکہ وغیرہ میں، اس میں کئی چیزیں جائز نہیں ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مرتہن ہے، یعنی جو مارٹگیجی ہے جس کے پاس رہن کی چیز رہتی ہے، اسے استعمال کرنے کا حق دے دیا جاتا ہے، وہ اسے استعمال کرتا ہے، شریعت میں اسے استعمال کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ مارٹگیج جو ہے وہ تو قرض کی ری پیمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے ہے، قرض اصل پورا کا پورا اس کو دیا جائے گا، تو یہ جو مارٹگیج کی پراپرٹی استعمال کرے گا یہ کہاں جائے گی، یہ تو اضافی چیز ہو گئی، لہٰذا یہ ربا ہے. اس لیے اگر وہ اس پراپرٹی کو استعمال نہیں کرتا اور اس کا نفع نہیں اٹھاتا تو پھر رہن میں کوئی شرم قباحت نہیں ہے. اور اگر یہ طے ہو جائے کہ جو نفع اس کا لے رہا ہے اسے کیلکولیٹ کر کے اصل رقم میں سے منہا کر لیا جائے گا تو بھی جائز ہے. فرض کیجئے 1 لاکھ روپیہ قرض ہے اور اس نے مثال کے طور پہ موٹر کار رہن رکھ لی، اور موٹر کار میں یہ طے کیا کہ جی موٹر کار میں استعمال کروں گا، اور اس کا مارکیٹ میں اس طرح کی موٹر کار اگر روزانہ استعمال کی جائے، اس لیول کی، اس میک کی، اس برانڈ کی، تو اس کا 100 روپے روز کرایہ ہوتا ہے، وہ 100 روپے روز کا کرایہ اصل رقم میں سے منہا ہوتا رہے تو بھائی یہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ تو اصل رقم میں سے پیمنٹ ہو رہی ہے. لیکن اصل رقم 1 لاکھ جوں گی توں رہے اور یہ گاڑی مفت میں استعمال ہو تو یہ جو گاڑی کا استعمال ہے یہ ربا ہے. اس لیے مارٹگیج فی نفسی ناجائز نہیں ہے، اس طرح کی تفصیلات جو شرح قابل اعتراض ہوں وہ ناجائز ہیں. پیمنٹ انسٹالمنٹ سے میں کہہ چکا ہوں کہ انسٹالمنٹ میں اگر کوئی پیمنٹ کی جائے اور اس میں رقم عام قیمت سے زیادہ ہو تو وہ جائز ہے، بشرطے کہ پہلے ہی ٹرانزیکشن میں یہ طے کر دیا جائے کہ اس کو قسطوں میں ادا کریں گے، اتنی شرائط ہوں گی، اتنی قسطیں ہوں گی اور یہ رقم ہوگی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے. لیکن بعض لوگوں کو اس میں بھی تامل ہے، اس میں میں نے کہا کہ میجورٹی کا نقطۂ نظر یہی ہے اور یہ مجھے درست معلوم ہوتا ہے. ایک شخص نے ہاؤس بلڈنگ سے گھر بنانے کے لیے قرض لیا، خود غریب آدمی، بچے چھوٹے ہیں، اب وہ ان کی اقساط جمع کرواتا ہے سود کے ساتھ. اگر لے چکا ہے اور پھنس گیا ہے تو پھر معافی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور قسطیں دے دینی چاہیے، لیکن اگر ابھی نہیں کیا تو اس کو بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے. ہمارے بینکنگ کا نظام سراسر سودی ہے، میں جواب دے چکا ہوں کہ سراسر سودی نہیں ہے، بعض چیزیں سودی ہیں، بعض غیر سودی ہیں، और कोई शख्स अगर बैंक में नौकरी मिल रही है, कहीं और नौकरी नहीं है, तो वो बैंक में कर सकता है। कोशिश करे कि ऐसे हिस्से में चला जाए जहाँ डायरेक्ट सूदी कारोबार नहीं करना पड़ता, और अगर मुतबादिल नौकरी मिलती है तो उसको तरजीह देनी चाहिए। बाद लोगों के मुताबिक इंटरेस्ट फ्री कायम निज़ाम उस वक्त कायम हो सकता है जब तमाम मुस्लिम मालिक आपस में ताल्लुक रखें, खुद कफील हों। बिल्कुल ठीक है, वाकई आइडियल निज़ाम तो उसी वक्त होगा जब सब मुस्लिम मालिक मिलकर तय करें। लेकिन अगर मुस्लिम मालिक तय ना करें तो किसी एक मुस्लिम मुल्क के लिए ये कोई उज़र नहीं है कि जी मिस्र नहीं करता तो हम क्यों करें, लीबिया नहीं करता तो हम क्यों करें, अगर लीबिया में लोग शराब पीते हैं तो हम पीने लगें तो ये तो जायज़ काम नहीं होगा, फ़लाँ मेरे पड़ोस में लोग झूठ बोलते हैं तो मैं झूठ क्यों ना बोलूँ। ये शरीयत में कोई उज़र नहीं है। अगर एक आदमी गलती करता है तो वो दूसरी आदमी की गलती के लिए जवाब नहीं हो सकता। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सिस्टम मुमकिन नहीं है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह मियां ने इतनी अहम बात से मना किया और इतनी सख्ती से मजम्मत की और कोई सिस्टम नहीं दिया। सिस्टम तो दिया है, 1300 बरस मुसलमानों में आखिर कारोबार हुआ है, स्पेन से लेकर और चीन की हदूद तक, मंगोलिया तक, ये निज़ाम बगैर इंटरनेशनल ट्रेड के कैसे चलता था। ये कहना कि जी इंटरनेशनल ट्रेड अब पिछले 100 बरस से पैदा हुआ है तो फजूल और बेवकूफ़ी की बात है। इंटरनेशनल ट्रेड हर ज़माने में रहा है, बड़ी दुनिया में था, मुसलमानों के कारोबार थे, मुसलमान सहाबा किराम में बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हज़रत ज़ुबैर का, हज़रत तलहा का, हज़रत अब्बास का बड़ा कारोबार था, बिज़नेस था, इमाम मालिक का बड़ा कारोबार था, बुजुर्गान दीन में इमाम अबू हनीफा का बड़ा कारोबार था, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का बड़ा बिज़नेस और कारोबार था। ये सब बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इनके नाम तकवा और दयानत में इतने ऊँचे हैं कि आज तक ज़ैबुल मसल हैं। तो ये कहना, और इन सब के इंटरनेशनल बिज़नेस थे, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी का बिज़नेस बड़ा इंटरनेशनल था, उनके शिपिंग, मैं अगर कहूँ आज की ज़बान में, एक शिपिंग कंपनी थी तिजारत की, उनके जहाज़ आया जाया करते थे। एक मरतबा उन्हीं का किस्सा सुना है कि बैठे हुए थे मजलिस में कि एक शख्स ने आके बयान किया कि जी आपका जो जहाज़ आ रहा था माल लेकर वो डूब गया। खामोश हो गए, थोड़ी देर गर्दन झुकाए बैठे हैं, फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर में फिर वक्त गुजर गया, अगले दूसरे तीसरे दिन या उसी दिन किसी ने आके कहा कि जी वो खबर गलत थी, वो आपका जहाज़ नहीं था बल्कि वो किसी और का था। फिर खामोश हो गए, थोड़ी देर गर्दन झुका के सोचते रहे, फिर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी शख्स ने पूछा कि जी आपने कल भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा है? तो कहने लगे कि हाँ ठीक है, जब मैंने ये खबर सुनी कि मेरा माल डूब गया, बड़ा कई लाख रुपए का होगा, पता नहीं कितने का होगा, तो मैंने फ़ौरन ये गौर किया कि क्या मेरे नफ्स में अल्लाह ताला के बारे में कोई शिकायत या कोई गैर ज़रूरी अफसोस या गैर ज़रूरी सदमे की कोई कैफियत है, और मैं राज़ी बरज़ा इलाही हूँ कि नहीं हूँ। तो मैंने गौर किया तो मैंने महसूस किया कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ और मुझे इसमें कोई शिकायत या अफसोस का जज्बा नहीं हुआ, अल्लाह ताला की यही मंशा थी। जब मैंने महसूस किया तो मैंने इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर जब उसकी खबर मिली कि नहीं मेरी दौलत बच गई है, रकम बच गई है, तो मैंने गौर किया कि क्या मेरे दिल में कोई ताली पैदा हुई, कोई शैतान ने कोई हिवस पैदा की मारा दौलत के आने से, कोई ऐसी अंडी खुशी ऐसी पैदा हुई कि जो मुझे याद इलाही से गाफिल कर दे। तो मैंने गौर किया, मालूम हुआ कि ऐसी कोई कैफियत पैदा नहीं हुई जो याद इलाही से गाफिल कर दे, तो मैंने इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो अगर ये कैफियत हो तो इंटरनेशनल कारोबार ज़रूर करें, अल्लाह ताला बरकत दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 2 बज गए हैं।